ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री राधा रानी की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप लोगों की डिमांड है, कुछ याद है आपको लास्ट टाइम क्या बोला था मैंने? तो पिछले लेक्चर में हमने गोवर्धन भगवान ने उठाया था, तो उसके बारे में चर्चा की थी। तो फिर प्रश्न ऐसा हुआ था कि जब गोवर्धन उठाया भगवान ने, तो 7 दिन और 7 रात उठाया ना, 7 दिन और 7 रात मिलकर 168 घंटे होते हैं। तो उन 168 घंटे में क्या हुआ? ये भी एक प्रश्न है ना। जैसे वो उठाया उन्होंने, बाहर वर्षा हो रही है, बाहर जा सकते नहीं है, उसके नीचे खड़े रहना है, तो क्या सब लोग सो गए, आराम से सो गए? 7 दिन तो कुछ काम नहीं है। क्या उनको पता था कि 7 दिन ही चलने वाला है, कि 2 दिन चलने वाला है, कि 10 दिन चलने वाला है? तो इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ऐसी है कि ब्रजवासियों को बिल्कुल पता नहीं था कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए और क्या होगा। नो आइडिया। यहाँ तक कि एक आपको मैं छोटी सी कहानी बताता हूँ उसके पहले वाली। ये कहानी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि गोवर्धन उठाने की लीला जो है वो ये महीने में हुई है। इस दिन हुई है, 14 नवंबर को गोवर्धन पूजा होगी, जिस दिन भगवान ने इंद्र की पूजा कैंसिल की और उनको कहा कि आप इंद्र की पूजा मत करो, अब गोवर्धन की पूजा करो। बहुत सारी लंबी डिस्कशन है वो कृष्णा और उनके पिताजी के बीच में। फाइनली कृष्णा ने अपने पिताजी को कन्विंस किया कि आपको ऐसे ही करना है, तो उन्होंने मान गए। सब लोग खुश हो गए बहुत कि आज कुछ नया होगा। तो उसके बाद गोवर्धन का पूजन हुआ, पर्वत चढ़ाए उनको, बहुत सारे अपना साल भर का जितना स्टॉक है ना घर का वो सारा लगा दिया। अभी नेक्स्ट मील में क्या मिलेगा पता नहीं है उनको, पूरा समर्पण है उसके अंदर। पहाड़ों के पहाड़ भोग लगाए उनको, 2 पहाड़ों के बीच में उंगली रखने की भी जगह नहीं थी, इतने व्यंजन लगाए, सारे कूट के रूप में, अन्नकूट यानी पदार्थों के पर्वत बनाकर पर्वत पर्वत ऐसे लगाए, और जो लिक्विड था उसके हौद बनाए, तालाब बनाए, गड्ढे बनाए, उसके अंदर हजारों लीटर लस्सी छाछ फलों का जूस सब डाल दिया उसके अंदर, और वो पूरा उत्सव संपन्न हो गया। आनंद ही आनंद पूरे ब्रज लीला में, इतना बड़ा आनंद कौन सी लीला में भी नहीं हुआ है, क्योंकि गोपियाँ भी उसके अंदर थी, ग्वाल बाल भी थे, बड़े ग्वाल बाल, बड़े मैयाएँ मैयाएँ मौसियाँ ताई जी सब लिख थे उसके अंदर थे। कोई ब्रजवासी पर्वत के छत के बाहर नहीं था, सारे उसके अंदर आए थे प्रोटेक्शन के लिए। इसलिए इस लीला को कहते हैं आश्रय लीला, आश्रय लीला, क्योंकि भगवान ने सबको आश्रय दिया, जीवन मृत्यु के संकट से बचाया। किसी को पता है संवर्तक बादल क्या होते हैं? संवर्तक बादल प्रलय के पाल टाइम बरसते हैं, उनका काम ही एक टाइम होता है, इसका समय हो गया तो फिर बादलों को भेजते हैं और इतनी वर्षा करते हैं कि पृथ्वी पर 1000 किलोमीटर तक पानी जमा होता है चारों तरफ, और मिनी प्रलय होता है, मैक्सिमम बड़ा प्रलय भी नहीं है। फिर ब्रह्मा की एक रात तक यानी 432 करोड़ साल तक वो वर्षा होती रहती है कंटिन्यूस। फिर उसके बाद में 100 सूर्य एक साथ प्रकाश देते हैं और वो जितना पानी जमा हो गया है उसका बाष्पीभवन कर देते हैं, स्टीम बना के उसको ड्राई कर देते हैं, फिर नई सृष्टि का निर्माण होता है। ब्रह्मा जी का दूसरा दिन आरंभ होता है, एक दिन हो गया, एक रात हो गई, नेक्स्ट डे वापस शुरू हो गया, फिर क्रिएशन, फिर मेंटेनेंस सब चालू हो जाता है। तो वो बादल उन्होंने ऑफ टाइम भेजे, प्रलय का समय नहीं था, लेकिन अहंकार और क्रोध इतना था कि इतनी हिम्मत उनकी कि मेरी पूजा कैंसिल कर रहे हैं और एक पत्थर की पूजा कर रहे हैं, इंद्र को भूलकर, देवराज इंद्र को, क्या समझते हैं अपने आप को ये ब्रजवासी लोग, जाओ समूर्तक बादलों जाओ और सब विध्वंस कर दो, न केवल पृथ्वी को या वहाँ की सृष्टि को, सारे जीवों को नष्ट कर दो, सारे ब्रजवासियों को, बालकों को, गायों को, बैलों को सब खत्म कर दो। तो बादल जो है ना वो व्यक्ति है ना, वो भी बोल रहे हैं महाराज ये तो प्रलय का समय नहीं है, आपको पूछने का काम नहीं है, ऑर्डर फॉलो करो, गो। तो बहुत भयंकर वर्षा शुरू होगी ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मूसलधार वर्षा बोलते हैं। मूसल का मतलब पता है आपको, गांव में ना मसाला कूटने का एक बड़ा पात्र होता है, बड़ा मिट्टी का होता है, कभी लोहे का भी होता है, और एक बड़ा डंडा होता है और उसमें मसाले पीसते हैं, ऐसे दो दो औरतें एक एक करके पीसते रहते हैं, उसको कहते हैं मूसल। वो पुराने ज़माने के जिम में भी हुआ करता था, उसको ऐसे ऐसे करते ना, वो है मूसल, ऐसे करके फिर ऐसे पकड़ते, फिर ऐसे करके फिर ऐसे पकड़ते। वो मूसल एक बूंद थी बारिश की, इसलिए कहते हैं मूसलधार, यानी आकाश से मूसल गिर रहे थे, इतने बड़े बड़े बिंदु, हमारे बिंदु कितने होते हैं आकाश के जो गिरते हैं धुआंधार बारिश में, कितने गिरते हैं, एक एक बूंद कितनी स्मॉल साइज की होती है, लेकिन ऐसे मूसलधार भयंकर वर्षा हुई। तो मुंबई में कैसे होती है, कभी कभी 7-7 दिन भी चलती है कंटिन्यूस, अंधेरा, नो सन। ये तो मूसलधार वर्षा जो सृष्टि को प्रलय काल में नष्ट करने के लिए आवश्यक है वो वर्षा हो रही है वहाँ पर। अचानक अंधेरा हो गया, धुआंधार, सब आवाज़ें आ रही हैं, प्राणी चिल्ला रहे हैं, अंधेरा हो रहा है, ठंड गिर रही है, बर्फ़ ये क्या कहते हैं उसको, बिजली गिर रही है, हवा चल रही है, भयंकर आवाज़ गर्जनाएं बादलों की हो रही है, सब तरह से मृत्यु का तांडव एक तरह से हो रहा है। और सब लोगों ने क्या किया, कृष्ण कृष्ण पुकारा। देखो कितनी सिंपल बात है, समझ लीजिए ऐसी, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है तो आप क्या बोलेंगे, अरे सारी प्रॉब्लम तो इसकी वजह से, ये बालक की वजह से, अगर ये अपनी उद्दंडता नहीं करता तो ये सब नहीं होता, इंद्र को कोप नहीं होता, ये नंद बाबा ने क्यों मानी ये बात, बालक की बात, वो तो बालक है, नटखट है, वो कुछ भी बोलेगा, नंद बाबा का तो अक्कल है ना, तो सुनना चाहिए था ना, सोचना चाहिए था, नंद बाबा भी मान गए। तो सबके दृष्टि से ये सबकी वजह कौन है, श्री कृष्ण है। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात यह है, वो वजह होंगे लेकिन जब संकट आया तो उन्हीं को पुकारा, कृष्ण कृष्ण महाभाव, हे महाभाव कृष्ण बचाओ हमें, तो कृष्ण आए उधर। बहुत लंबा वर्णन है, कितना कष्ट हुआ लोगों को उस वर्षा में, गायें भी अपने चार पैर के बीच में अपने बछड़े को खड़ा करके बचाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन कैसे बचाएं, सब जगह सब घर बहे जा रहे हैं, पेड़ बहे जा रहे हैं, गौशालाएं बहे जा रही है, गाय और बैल भी बहे जा रहे हैं, तो नो चांस टू सेव एनीबडी। उसमें फिर कृष्ण आए और सबको कहा चलो मेरे साथ, तो हम और आप होते ना तो ये पूछते कि अरे अभी तू हमको कहाँ ले जा रहा है, तुम्हारे कारण सब कुछ संकट हो रहे हैं। अरे बोल डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, प्लीज लिसन। तो कृष्ण ने कहा चलो हमारे साथ, तो वो एक गांव है वहाँ पर, उसका नाम है प्रविष्ट वन, जिसको आज पेठा कहते हैं, पेठा गांव। उसका नाम प्रविष्ट वन क्यों पड़ा है, भगवान ने उसमें प्रवेश किया इसलिए उसका नाम पड़ा प्रविष्ट वन, और आगे एक प्रविष्ट गुफा भी है, उसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि उस गुफा में भगवान ने प्रवेश किया, जमीन के नीचे गए भगवान और जमीन के नीचे से भी गोवर्धन को उठाया, तो जिस गुफा में प्रवेश करके जमीन के नीचे जाकर गोवर्धन को उठाया उसका नाम पड़ा प्रविष्ट गुफा। उसके पहले सब ग्वाल बालों ने पूछा अभी आपने कहा आ जाओ तो हम आ गए, अभी आप क्या करोगे हमें बचाने के लिए, तो बालक ने कहा कि मैं ये पर्वत को उठाऊंगा। समझो हमारी सच्ची देवी है ना, इनका नाम सच्ची देवी है, और ये अगर मुझे बोलेगी कि मैं भक्तिवेदन हॉस्पिटल को उठाऊंगी, जैसे आप अभी भी हंस रहे हो, आगे भी हंसेंगे ऐसे बोलेंगे तो वैसे ही कृष्ण ने कहा। वो पूछ रहे क्या करोगे अभी हमको बचाने के लिए, तो बोले पर्वत को उठाऊंगा। तो उनको भी डाउट आया, उनके चेहरे में क्वेश्चन आया कि अरे तू इतना सा बालक क्या पर्वत को उठाएगा। तो भगवान ने उनका विश्वास उनको दिलाने के लिए क्या किया पता है आपको? वहाँ पर एक बहुत विशाल कदम का पेड़ था, अगर मैं हूँ ना, जब मैंने ऐसे हाथ किया ना तो भी उसका जो विस्तार है ना वो मेरे हाथ में नहीं आएगा। इतना बड़ा पेड़ जो अभी यहाँ पर कम दिखाई पड़ता है, अभी भी वहाँ पर कुछ पेड़ हैं ऐसे जो उनका विस्तार ऐसा यहाँ से यहाँ तक केवल उसका ट्रंक ही है। तो वो भगवान ने अपने 7 साल की उम्र में नन्हे नन्हे हाथों से उसको उखाड़ा, ये भी आश्चर्य की बात है। लेकिन यहाँ तक रुका नहीं उनका काम, उसको उठाया और निचोड़ दिया कपड़े जैसा, जैसे हम लोग साड़ी और कपड़ा निचोड़ते ना, ऐसा निचोड़ दिया, ब्रज भाषा में क्या बोलते हैं, ऐठ दिया उसको, उसको ऐठ दिया। आज भी वहाँ पर वो ऐठा कदम है जो आपको देख के पता चलेगा कि इसको किसी ने ट्विस्ट किया हुआ है। अभी वो डेड है लेकिन उसका जो ट्रंक है ना उसको उन्होंने वार्निश करके एक कबड़ में, कांच के कबड़ में रखा है। आज भी आप जाके वो दर्शन कर सकते हैं, पेठा गांव में है, बहुत सुंदर दर्शन है। तो ये कथाएं केवल कथाएं नहीं है, ऐसे बच्चों को रिझाने के लिए बनाए नहीं है, ये सब सत्य घटनाएं हैं। इसके सारे प्रूफ ब्रज में मिलेंगे आपको, आपको पता होगा वो या पता होने के लोगों के साथ जाएंगे तो आपको ये सब स्थान दिखेंगे जहां भगवान ने क्या क्या किया है। तो ये देखकर सभी ग्वाल बालों को, गोपों को, गोपालों को, सबको विश्वास हुआ कि ये कुछ कर सकता है। फिर उसके बाद उनका विश्वास हासिल करके वो आगे गए, सबको रुकाया, सब तो बारिश में सब लोग भीग रहे हैं, जमीन के अंदर गए और पहले ऐसे उठाया भगवान ने, फिर उसको ऐसे उठाया। हम लोग भी करते हैं कभी ऐसे करके उठाते हैं, ऐसे उठाते, ऐसे भगवान ने लेफ्ट हैंड में उठाया और फिर अपनी छोटी उंगली में उसको खड़ा कर दिया। ऐसे क्यों किया भगवान ने, राइट हैंड क्यों नहीं लिया, ये उंगली क्यों नहीं लिया, ऐसे क्यों नहीं उठाया, ऐसे क्यों नहीं उठाया? क्योंकि जो व्यक्ति राइट हैंड वाला होता है ना, राइट ही बोलते हैं उसको, दाहिने हाथ से काम करता है ना, उसके शरीर का सबसे कमज़ोर हिस्सा बाएं हाथ की छोटी उंगली होती है। आप देखिए, आप ये उंगली से कभी काम करते हो, कुछ थैली उठाते हो क्या? कभी कभी इससे उठा सकते हो, लेकिन इसमें आप बहुत 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 ऐसा होगा तो ही उठाएंगे, या तो कुछ रिंग रखेंगे, की चेन रखेंगे इसके ऊपर, लेकिन कोई वजन वाला सामान नहीं उठाएंगे, क्योंकि वैसे भी शरीर का सबसे कमज़ोर हिस्सा होता है। उससे क्यों उठाया? क्योंकि इंद्र ने अपना सबसे बड़ा पावर जो है ना उसको इस उपयोग किया था संवर्तक बादलों के लिए। उसका दो बड़ी पावर है, एक है वज्र, जानते हैं वज्र क्या होता है इंद्र का? वज्र क्या होता है? वो दधीची ऋषि के मृत्यु होने के बाद में जो उनकी 206 हड्डियां हैं उसको मिलाकर उसको प्रोसेस करके ये बनाया था वज्र, जो वृत्रासुर को मारने के लिए बनाया गया था। तो वज्र इतना अभेद्य शस्त्र था कि सारे देवताओं में, सारे विष्णु के अवतारों में, केवल विष्णु के अलावा, कृष्ण के अलावा उसको कोई परास्त नहीं कर सकता है, ऐसा वो वज्र का अस्त्र है। टॉप मोस्ट वेपन है वो इंद्र का, जैसे हमारे यहाँ पर कैसे परमाणु बम, इलेक्ट्रॉन बम, न्यूट्रॉन बम होता है ना, एकदम टॉप मोस्ट पावरफुल एनर्जी, उस प्रकार से वो वज्र है। तो एक उनके पास वज्र है और एक संवर्तक बादल है, कोबड़ी डिफीट नहीं कर सकता है उसको, सारे देवता भी समाप्त हो जाएंगे। तो उन्होंने पहले क्या भेजा था? संवर्तक बादल, वो अभी बरस ही रहे हैं। एंड में क्या हुआ कि 7 दिन और 7 रात अपनी पूरी शक्ति के साथ वर्षा करने के बाद संवर्तक बादलों का टैंक खाली हो गया, यानी पानी समाप्त हो गया। अभी क्या करेंगे? वो पानी है तो स्ट्रेंथ है, पानी है तो बरसाएंगे, पानी समाप्त हो गया, सब दुखी हो गए और सब वो इंद्र के पास गए बताने के लिए, महाराज आपने तो भेजा था लेकिन सब समाप्त हो गया हमारा, अभी हमारे पास बारूद ही नहीं है, यानी पानी नहीं है। इंद्र ने कहा डोंट वरी, मैं आ रहा हूँ हाथी पे बैठ के, वज्र लेके आऊँगा, अभी वज्राघात करूँगा उनके ऊपर, वज्र उठाऊँगा उनके ऊपर। तो वो नीचे आए और उन्होंने ये सारा सीन था ना सीन, उस पर वज्र फेंका, तो क्या हुआ? वज्र टूट गया और गोवर्धन टस से मस नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ गोवर्धन। यहाँ तक कि 7 दिन और 7 रात इतनी घनघोर वर्षा करने के बाद भी गोवर्धन के ऊपर जहाँ वर्षा हो रही है, बाकी लोग तो नीचे आराम से खड़े, लेकिन ऊपर तो वर्षा हो रही ना, तो गोवर्धन के ऊपर का एक तिनका होता है ना, तिनका ब्लेड ऑफ ग्रास, वो भी टूटा नहीं, और गोवर्धन आनंद में थे। क्यों आनंद में थे? एक ही व्यक्ति भीग रहा है बेचारा, बाकी सब लोग तो उसके नीचे आराम से खड़े, क्योंकि भगवान ने अपनी छोटी उंगली के अग्र भाग से सारी एनर्जी सारी कृपा उनको दे के रखी थी। गोवर्धन के अंदर इतनी शक्ति संचारित हुई थी कि गोवर्धन को इतनी मूसलधार वर्षा 168 घंटे हुई, लेकिन गोवर्धन को कुछ भी नहीं बोल रहे, उनका आनंद आ रहा था बहुत, क्योंकि कृष्ण के छोटे उंगली से उनको बड़ा आनंद का प्रवाह संचार प्राप्त हो रहा था। इतना आनंद आया गोवर्धन को। गोवर्धन के अंदर जो गुफाएं थी वहाँ के शेर और सिंह और हाथी रोते रोते बाहर आ गए, ऐसे भी वर्णन दिया है कि वो चिल्लाते चिल्लाते गर्जना करते हुए डर के मारे बाहर आ गए, कितनी वर्षा हो रही है, लेकिन गोवर्धन पर्वत को कुछ कष्ट नहीं हुआ। तो अभी मैं उत्तर देता हूँ कि उन्होंने बाएं हाथ की छोटी उंगली का उपयोग क्यों किया, ये बताने के लिए कि इंद्र तुम्हारी सबसे बड़ी पावर जो है संवर्तक बादल और वज्र, वो मेरे बाएं उंगली के छोटी उंगली के बराबर भी नहीं है, क्योंकि थक नहीं गई उंगली उंगली, उन्होंने चेंज नहीं की उंगली, बीच में छोड़ा कि आपने बीच के लगाई फिर बाद में लगाई, फिर ऐसा हाथ लगाया, फिर हाथ चेंज किया क्योंकि ये हाथ में दर्द हो गया, ये हाथ में चेंज किया, ये हाथ की उंगली बदली, और ऐसा ऐसा लोग मसाज कर रहे हैं उनको, इधर से दुख रहा है कि आपको ऑयल मसाज कर रहे हैं बीच में, थोड़ा सेक दे रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, सुना है क्या? आराम से खड़े हैं, आराम से खड़े हैं, ऊपर से मुरली निकाली ऐसी, वो बजाना शुरू कर दिया। सब लोग बोल रहे मत बजाओ मत बजाओ, क्योंकि जब मुरली बजती है तो सब लोग कांपते हैं प्रेम से, और ये भी खुद भी कांपता है, और ये कांपेगा तो ये भी कांपेगा जो आपने पकड़ा हुआ है, और वो गिरेगा तो। फिर भी उन्होंने मुरली बजाई। कला कब सूझती है आपको? जब आप बड़े आनंद में होते हो। तो कृष्ण जो है ना, बंद करो, आनंद में थे इसलिए उनको वो मुरली बजाने का सूझा। अगर कष्ट में होते और दम लगता था तो वो कैसे मुरली बजाते? इसका मतलब उनको जरा सा भी श्रम नहीं हुआ, जरा सा भी कष्ट नहीं हुआ। तो ये इंद्र को बताने के लिए कि तू होगा इंद्र, देवों का राजा होगा, और तुम्हारे पास सभी देवताओं से भी श्रेष्ठ कोई शस्त्र अस्त्र होगा, मेरे वो बाई उंगली के छोटे भाई हाथ के छोटे उंगली के बराबर भी नहीं है। तो जब वज्र टूटा ना, वज्र टूट गया ना, तब इंद्र को समझ में आया कि ये मेरे वज्र को तोड़ने की शक्ति केवल परम भगवान कृष्ण में ही है, और मैं सोचता हूँ ये तो नटखट उद्दंड बालक है, नहीं यही कृष्ण है, यही मेरे आराध्य भगवान है, जो मैं भूल चुका था, इसलिए इनको वर्षा करने का प्रयास किया मैंने। तो वहाँ से फिर वो समझ में आया कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, क्रोध और अहंकार के वश मैंने इतना बड़ा अपराध किया है कि कृष्ण को अपने भक्तों के साथ मारने का प्लान किया था मैंने, सबको इतना कष्ट दिया मैंने। तो फिर वो मनाने के लिए आने लगा, इधर से ऐसे खड़े ना, वो इधर से आया तो भगवान ने उधर देखा, फिर वो इधर से आया तो भगवान ने इधर देखा, जानबूझ के आई डोंट केयर, दुर्लक्ष कर दिया उसको। सबसे बड़ा इंसल्ट क्या होता है? झगड़ा करना नहीं, निग्लेक्ट, आप हो ही नहीं मेरे लिए यहाँ पर, ऐसे निग्लेक्ट करना सबसे बड़ा इंसल्ट होता है। भगवान ने उसको थोड़ा टोटल दुर्लक्ष कर दिया, तो समझ गए कि बहुत ज़्यादा नाराज है ये, इतना बड़ा अपराध मैंने किया, उनके प्रिय भक्तों को मार डालने का मैंने प्रयास किया। सीधे ऊपर भागे वो, और कहाँ गए? अपने देव के देवताओं के जो गुरु है ना, बृहस्पति, जिनको हम गुरु कहते हैं, गुरु बृहस्पति के पास गए, उनके चरणों में गिरे, गुरु महाराज बचाओ, मैंने बहुत बड़ा गलती किया है। तो उन्होंने कहा आप मूर्ख नंबर वन हो, कि हकीकत में आपने ऐसा अपराध किया है। बोले महाराज मैं मानता हूँ कि मैं मूर्ख नंबर वन हूँ, मैंने ऐसा जघन्य अपराध किया है, कोई उपाय बता दो आप। तो कहते हैं कि आपने जो अपराध किया ना, उस अपराध को कोई भी डिस्काउंट नहीं है, कोई भी कंसेशन नहीं है, मैं कुछ बता नहीं सकता आपको, इतना बड़ा जघन्य अपराध किया, मैं कुछ सोच भी नहीं रहा है कि क्या बताऊँ आपको, लेकिन मुझे लगता है ऐसा मन में एक ऐसा एक विकल्प आ रहा है, ऐसा नहीं कि सुझाव आ रहा है या सोल्यूशन आ रहा है, लेकिन वी कैन ट्राई समथिंग ना। मेरा ऐसा लगता है विचार कि कोई भक्त कृष्ण का बड़ा प्रिय होगा, जो कृष्ण को प्यारा लगता है, वो अगर आपकी सिफारिश करेगा तो शायद आपका काम बन सकता है, जो उनके क्लोज है, तो प्रेमी है भक्त। तो इंद्र भी सोचने लगा भी किसको तुम्हें पकड़ना पड़ेगा, सब लोग उसके सामने कुछ नहीं है क्योंकि वो देवताओं का राजा है, ये तो सब ग्वाल बाल, गाय चराने वाले, दूध निकालने वाले, दही निकालने वाले, मक्खन बेचने वाले, ये सब लोग ऐसे हैं, उनके अधिकार के सामने कोई नहीं है। लेकिन इंद्र जो है पूरे स्वर्ग लोक से उतर के नीचे आया। उस समय ऑलरेडी वर्षा खत्म हो चुकी थी और कृष्ण ने पर्वत नीचे रख दिया था, सब लोगों को बाहर निकाल के पर्वत को जगह पर रखा, सब अपने घर चले गए थे। और नेक्स्ट डे 7 दिन के बाद में वो नीचे आए, यानी 8वें दिन। इस समय वो तृतीया के समय वर्षा शुरू हुई। देखो सीक्वेंस कैसा है, प्रतिपदा के दिन गोवर्धन पूजा हुई, भैया दूज के दिन कृष्ण बलराम को लेकर नंद बाबा उनके भाई के घर गए थे उनकी बेटियों के साथ में भैया दूज का उत्सव मनाने के लिए। तो नेक्स्ट डे वॉज उपनंद बाबा के घर में उत्सव चल रहा था। कौन सी तिथि हो गई, द्वितीया। तृतीया को वर्षा शुरू हुई और तृतीया से नौवीं तक 7 दिन वर्षा हुई। 7वें दिन वो खुद आए, वज्र चलाया, समझ में आया कि भगवान ने गलती किया, तुरंत ऊपर चला गया। लेकिन वो गया और यहाँ पर भगवान ने पर्वत को नीचे रखा क्योंकि अभी वर्षा तो नहीं हो रही है, सबको हिम्मत नहीं हो रही थी बाहर निकलने की। उन्होंने कहा देखो हाथ देखो आप, वर्षा नहीं हो रही, चिंता मत करना, चले जाओ। तो सब लोग फिर हिम्मत करके बाहर चले गए, पर्वत रखा और सब अपने अपने घर चले गए। नेक्स्ट डे भगवान ऐसे घूम रहे थे देखने के लिए कि कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, इधर आ जाइए। सो जब भगवान वहाँ इंस्पेक्शन कर रहे थे तो सुरभि गाय भी वहाँ चल रही थी, थोड़ी दूर थी वो, तो इंद्र वहाँ पर उतरे और सीधे सुरभि गाय के चरणों में गिरे, जो एक राजा के लिए किसी गाय के चरणों में गिरना बहुत कितना नम्र होना पड़ेगा उसको, कितने खतरे में रहेगा, कितना तकलीफ में रहेगा, तो ही करेगा ना ऐसा काम। तो वो इतना नम्र हो चुका था, पश्चाताप में इतना डूब रहा था, जाके गाय के चरणों में गिरा और गाय ने तुरंत शरण दे दी उनको। अभी आप एक बात सोचो कि समझो आप उस गाय के जगह पे होते तो आप क्या करते, आपके चरणों में वो व्यक्ति गिर रहा है जिसने 7 दिन पहले आपको मारने का प्लान बनाया था, 7 दिन जान से मारने का प्लान बनाया था, वो व्यक्ति अभी आपके पास आके गिड़गिड़ा रहा है और सॉरी बोलने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोग क्या करेंगे बताइए ना, आपको क्या लगता है करना चाहिए?
यस,
आप उस पर गुस्सा करेंगे, अभी आया है तू वही है ना जो 7 दिन पहले हमको सबको मारने का प्लान करके बादलों को भेजा था, गेट आउट फ्रॉम हियर, ऐसा बोलेंगे आप। लेकिन सुरभि ने ऐसा नहीं किया, सुरभि ने तुरंत क्षमा कर दी उसको। का कारण पता है आपको, सुरभि ने क्यों क्षमा किया उस इंद्र को? का कारण यह है कि 7 दिन पहले कष्ट हुआ था बहुत वर्षा का, लेकिन 7 दिन 168 घंटे निरंतर कृष्ण का दर्शन कर रहे थे, वो मुरली सुन रहे थे और गिरिराज को उठाया हुआ दर्शन कर रहे थे। हाँ, वो 7 दिन के पहले और बाद में कभी दर्शन नहीं हुआ, वो 7 दिन के पहले या 7 दिन के बाद कभी भगवान का दर्शन नहीं हुआ गिरिराज को उठाए हुए, उसी 7 दिन में केवल हुआ। और ऊपर से दूसरा से मुरली बजा रहे थे, सब लोग मुरली की धुन भी सुन रहे थे, दर्शन भी कर रहे थे, 7 दिन 7 रात केवल आँखों से दर्शन का अमृत पी रहे थे वो, इसलिए उनको ना प्यास लगी, ना भूख लगी, ना नींद आई, ना कुछ कष्ट हुआ किसी प्रकार का, ना बोर हो गए वो। जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर 700 दिन भी वो उठा के रखते ना पर्वत को तो भी मज़े लेते वो सब लोग, इतना उनको भगवान ने दर्शन का आनंद दिया। और जब भगवान का दर्शन होता है ना तो मन में कोई किंतु परंतु बचता नहीं है, पुराने अपराध, पुराने इम्प्रेशंस, पुराने दुख की यादें, बचपन में किसी ने कहा था, शादी हुई तो सासू ने क्या बोला था, और ये हुआ था और झगड़े हुए थे, पहले दिन में जब ससुराल गई तो ऐसे ननद ने कहा था, ये सब पुरानी यादें ना बहुत डीप रहती है मन में। मरते दम पे मैंने देखा है, डेथ बेड पे भी लोग उसको याद करते हैं, मुझे ना वो, मैं इसको माफ़ नहीं कर सकती, मुझे वो शादी के पहले दिन जब मैं ससुराल गई थी तो ऐसे ऐसे हुआ था, दैट्स कॉल्ड डीप पेनफुल इम्प्रेशंस, जिसको उखाड़ कर नष्ट करना बहुत कठिन है, ये तो मृत्यु का प्रयास है ना उनके ऊपर। लेकिन भगवान का दर्शन करने से सब कुछ आदमी भूल जाता है, और केवल उसको वही आनंद याद आता है जो भगवान ने उनको दिया है दर्शन करके। एक ऐसा ही प्रसंग है कृष्ण की लीला में, वो कंस भी देवकी के चरणों में गिरा था। जब देवी आकाश में गई ना अष्टभुजा वाली और धमकी दी उसने, इनको कष्ट मत दे, तेरा मृत्यु कई जन्म ले चुका है, तो एकदम चरणों में गिर गया बहन के। बोला बहन जी माफ करो, आपका मैंने अपराध किया, लेकिन मैंने नहीं किया, भगवान कंट्रोलर है, मैं तो कठपुतली हूँ, मेरे हाथ से अपराध नहीं हुआ है, ये तो विधाता की योजना, ऐसा करके बहुत बहुत सारा क्या कहते हैं उसको, बहुत सारा सारवा सारो कहते हैं मराठी में, मतलब क्या है, जस्टिफिकेशन दिया कि मैंने जो भी कुछ किया वो मेरी गलती नहीं है, वो तो विधाता की गलती है। अभी अगर हमारे 6 बच्चे जन्म होते ही किसी व्यक्ति ने अगर पत्थर पर पटक कर पीस दिए होते, और वही व्यक्ति अगर आपको आके सॉरी बोल रहा है, चरणों में गिर रहा है, आप क्या करेंगे? बोले अच्छा पैर के नीचे आया है, मुंह पे लात मार दो उसके एक बार, कम से कम अभी तो मेरे नीचे आया है, मैं तो उसके भय के अंदर थी इतने दिन, अभी मेरे चरणों के नीचे एक बार लात मारी दो मुँह पे, थोड़ा क्रोध तो निकालूँ बाहर मेरा, इतना गुस्सा। लेकिन देवकी ने भी तुरंत माफ़ कर दिया उसको। क्या कारण है उसका? इतना वो ना कहते हैं वो जेल में ना 6 धब्बे थे ऐसे दीवार पर, 6 बालकों को पीस के मारा था ना, उसके खून के ऐसे छितड़े उड़े थे ना, वो सब उधर दीवार पे थे, और वो रोज देखती थी। 5 प्रेगनेंसी होके मार दिया है, 6ठी बार प्रेगनेंस है, तो वो 5 धब्बे देख रही है रोज, कैसे हालत होगी उसकी। वैसे देवकी ने अपने भाई कंस को तुरंत क्षमा कर दी। कारण क्या उसका? क्योंकि कुछ समय पहले उन्होंने, दोनों पति पत्नी ने विष्णु का दर्शन किया था कारागृह के अंदर, सुंदर सुंदर 4 भुजाएं, शंख चक्र पद्म गदा, घुंघराले बाल, कमल नयन, कन्नाभि कमल, चरण कमल, पीतांबर जो अनंत सूर्यों की तरह तेजस्वी था, ऐसा सुंदर मनोहर दृश्य देखा था उन्होंने। वो देखते ही सारा भय नष्ट हो गया, सारी पीड़ा नष्ट हो गई, सारा कष्ट नष्ट हो गया, सारी बुरी यादें भी नष्ट हो गई, ऑल बैड इंप्रेशंस आर फिनिश्ड, इसलिए वो क्षमा कर सकी। तो क्षमा कौन कर सकता है? जिनको कृष्ण का दर्शन होता है, जो कृष्ण भावना में रहते हैं, राम भावना में रहते हैं, नरसिंह भावना में, भगवान का जो भी अवतार है उसकी स्मृति में जो रहता है, जिसका दर्शन करता है मन में, भाव में, प्रत्यक्ष, वही किसी को क्षमा कर सकता है। नहीं तो अपने बुरे इंप्रेशन इतने भयंकर होते हैं ना, कोई किसी को माफ़ नहीं कर सकता है। माफ़ी करने के लिए कृष्ण भावना चाहिए, राम भावना चाहिए, भगवत भावना चाहिए। तो इसलिए सुरभि ने तुरंत माफ़ कर दिया। उन्होंने कहा क्या चाहते हो? उन्होंने कहा कृष्ण से क्षमा मांगना चाहता हूँ, मैंने उनका बहुत बड़ा अपराध किया है। तो वो कृष्ण को, उनको कृष्ण के पास उनको ले गई इंद्र को। कहते तब पहली बार श्री कृष्ण ने इंद्र की ओर देखा, उसके पहले देखा भी नहीं उसको मुड़कर भी। क्यों देखा? क्योंकि प्रिय भक्त सुरभि गाय जो है वो सिफारिश कर रही है भाई इंद्र है ये आपसे पश्चाताप होकर क्षमा मांग रहे हैं, इनको क्षमा करो। तब भगवान ने उनको क्षमा कर दी। एक ही कारण था उसका, क्योंकि प्रिय भक्त सुरभि ने उनको सिफारिश की थी उनकी। हमारे जीवन में भी यही है, जब तक कोई भक्त हमारे लिए सिफारिश नहीं करता ना, भगवान को कोई प्रयोजन नहीं हमारी ओर देखने के लिए। क्या ज़रूरत है? हम सब उनको छोड़ के आए, यहाँ पर विद्रोह करके आए, क्यों देखे वो हमको? व्हाट इज़ द नीड? अगर आपका बेटा आपको छोड़ के चला जाता है, पापा नहीं रहना आपके साथ मेरे को, आई डोंट वांट टू स्टे विथ यू, हेल विथ यू, ऐसा बोलेगा, तो आप क्यों उसकी परवाह करेंगे? वो आपको छोड़ के गया है, लेकिन फिर भी पिताजी प्रेम करते हैं बालक पर, बार बार देखते हैं क्या कर रहे हैं, बूट पॉलिश कर रहे हैं, वड़ा पाव खा रहे हैं, किधर क्या कर रहे हैं। वैसे ही भगवान भी सोचते रहते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि जब भक्त हमारी सिफारिश करता है तो हमारा काम आसान हो जाता है। कितना भी बड़ा अपराध होगा, अगर भक्त ने हमको शरण दी है और वो हमारी बात करता है तो भगवान उसको सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो भगवान ने इंद्र को तुरंत क्षमा कर दी, लेकिन एक वार्निंग ज़रूर दिया, अगली बार ऐसे मत करना, डोंट डू इट अगेन। तो मैंने आगे का बताया और पीछे का बताया, और बीच का बताया नहीं ना आपको। तो बीच में क्या हुआ कि जैसे उन्होंने उठाया ना पर्वत, तो मैया को बड़ी चिंता थी, इतना बड़ा पर्वत उठाया है, हाथ तो दुखता होगा ना उसका। तो कह रहे बेटा हाथ तो बदली कर दे, मैं इसको मालिश कर देती हूँ, थोड़ा सा माखन तो खा ले, सुबह से कुछ खाया नहीं, वर्षा में भाग रहे हम लोग, भूखा भी होगा, थोड़ा माखन भी खा ले, थोड़ा शक्ति आ जाएगी। तो कुछ लोग वहाँ से मशाद कर ले कि भगवान को जरूरत नहीं, तो आनंद में खड़े हैं, बहुत आनंद में खड़े हैं। तो जब वो माखन खिला रही है और कह रही है बेटा खा लो खा लो, तो ग्वाल बाल वो अपनी सहेलियों को क्या बोल रही है, यशोदा देखो मैंने इतना मेहनत करके मैं रोज़ माखन बनाती हूँ ना, उसको खिलाती हूँ, आज काम आया ना, देखो इतना स्ट्रेंथ जो है ना वो आज काम आया। मैं वो पद्मगंधा गाय बनाती हूँ जो जो कमल के खुशबू वाली घास खाते हैं, जिसके दूध को भी कमल की खुशबू आती है, उसका दही जमाती हूँ, उसको मंथन करती हूँ, फिर वो जो मक्खन निकलता है वो और ज़्यादा कमल की खुशबू वाला होता है, वो मैं इसको खिलाती हूँ। स्पेशल 100 cows आउट ऑफ 9 lakh cows आज इतनी मेहनत काम आई ना, देखो आज अगर ये नहीं होता, नहीं उठाता तो हम लोग कैसे बच पाते। तो ऐसे ये बड़ी बड़ी गोपियाँ जो माता के समान है वो सब में चर्चा कर रहे, देखो हमारा माखन का काम आया आज। फिर जो ग्वाल बाल है ना वो सुन रहे हैं ये माताओं की बातें, कह रहे मैयाओं को पता नहीं है, उनको लगता है हमारे माखन का बल है। बोले हमने उसको रोज कुश्ती में हरा हरा कर जो ट्रेनिंग दिया था ना वो आज काम आया। हमने ज़रूर उसको हराया, लेकिन हराते हराते हरते हरते वो बहुत ज़्यादा शक्ति भी, जैसे आप जो दीवार को ऐसे करते हो रोज, बाद में मसल बढ़ते ना रोज पुश करके, दीवार नहीं हिलेगी लेकिन मसल तो बढ़ेंगे आपके, उस तरह से हमने उसको बहुत हराया है कुश्ती में, पूरा चितपट करके आसमान दिखा है कई बार, लेकिन वो हार हार के जो शक्ति प्राप्त किया ना उसके वजह से आज वो उठा पा रहा है। ये ग्वाल बालों का कहना है, सब अपने आप बोल रहे हैं, मधुमंगल हाँ, अर्जुन, तोशल और बहुत सारे दोस्त हैं उनके, ऋषभ और कौन है, स्तोक कृष्ण, सुदामा, श्रीदामा, वसुदामा, ऐसे 8 friends हैं उनके। तो ये ग्वाल बालों की बात सुनकर गोपी सुन रही है, गोपियाँ, तो गोपियाँ कह रही है मैया को पता नहीं है स्ट्रेंथ कहाँ से आ रही है, ना ग्वाल बालों को पता है, हमको पता है स्ट्रेंथ कहाँ से आ रही है। इसका ऐसा हुआ कि जब सब उठाया ना तो सब लोग भाग के शांडिल्य मुनि के पास गए, ये सब अंदर हो रहा है उसके अंदर, बाहर नहीं अभी, सब अंदर है सब लोग, वर्षा हो रही बाहर, वो उसके अंदर खड़े हैं, और अभी बच्चा ने उठाया इतना बड़ा पहाड़ तो सब लोग को पता है कितना देर पकड़ेगा, गिरने वाला है उसके हाथ से। तो गुरु जी को बुलाया शांडिल्य मुनि को, बोला महाराज जी अभी तो पकड़ा रखा है, पता नहीं कितना देर पकड़ेगा, आप कुछ उपाय बताओ क्या करना है। तो आपको पता है उन्होंने क्या उपाय बताया, बोले एक आसन लगा दो उसके सामने, आंखों के सामने, और उस पर राधा रानी को बिठा दो, राधा रानी को देखेगा ना इतनी शक्ति आएगी उसके अंदर कि अनंत काल तक उठा सकता है उसको। अभी वो गुरुजी कहे संकट का समय कौन सोचेगा यस और नो, पॉसिबल नॉट पॉसिबल, करो कुछ तो चल जाएगा काम। तो आसन लगाया, राधा रानी को बिठाया, राधा रानी को देखते ही वो कांपने लगे ऐसे एकदम प्रेम से। तो बोले आपने बताया कि ये तो पकड़ेगा तो वो कांप रहा है, वो उल्टा गिर जाएगा हाथ से उनके। तो कहते राधा रानी ने फिर सोचा कि अगर मुझे देखकर ये कांपेगा और पर्वत गिरेगा तो अच्छा नहीं होगा, उल्टा फिर हमारा जो संबंध है उसकी भी निंदा होगी कि कैसा संबंध है इनका, सबके मृत्यु का कारण बना। तो राधा रानी ने, अभी आपको विश्वास होगा नहीं होगा ये लीला की बात है, राधा रानी ने अपने नज़रों में पर्वत को उठाया, नज़रों से, कृष्ण की उंगली खाली ऐसे खड़ी है उसके ऊपर ऐसे पर्वत है, राधा रानी ने उसको उठाया और उसको हवा में रखा केवल नज़रों से, और कृष्ण खाली ऐसे खड़े रहे 7 days 7 nights। तो गोपियाँ क्या कह रही है, अरे किसी को पता नहीं है कौन पर्वत उठा रहा है, किसकी शक्ति है। तो उन्होंने फिर ग्वाल बालों से बात किया, आप लोगों को पता नहीं है राधा रानी की नज़रों की शक्ति से पर्वत उठ रहा है। फिर उन्होंने मैयाओं को बताया आपका माखन का बल नहीं है, ये राधा रानी की नज़रों की शक्ति है। तो वो बहुत बहस हुई उसके अंदर। तो बीच में क्या हुआ, सब ग्वाल बालों को लगा कि बड़े लोगों को कि अरे बालक है अल्टीमेटली, कभी भी हाथ दुखेगा तो गिर सकता है, सबने में डंडे लगा दिए, सब ने लाखों करोड़ डंडे लगा दिए, हर ग्वाल काल के पास डंडे होते ना गाय चराने के लिए, वो सब लगा दिए, सोच रहे थे कि अभी हम पकड़ रहे हैं गोवर्धन को, बालक तो ऐसे ही हम सब सपोर्ट कर रहे हैं। तो भगवान ने क्या पता है, वो पर्वत को टिल्ट किया भगवान ने, तो सबको समझ में आया रे हम लोग नहीं पकड़ रहे वही पकड़ रहे हैं। वो टिल्ट क्यों किया उन्होंने, उसकी भी एक कहानी है, पता है आपको कहानी। वो एक थे ना अपने क्या नाम, अगस्ती मुनि। वो अगस्ती मुनि को एक बार पार्वती जी ने और शंकर जी ने अपने यज्ञ में भोजन के लिए बुलाया था, सबके साथ, अकेले नहीं थे वो, सारे संतों को बुलाया था और अन्नपूर्णा देवी बनाएगी तो कहाँ कमी पड़ने वाली है, है ना। अन्नपूर्णा जी तो अन्न का सागर है पूरा, अनलिमिटेड। तो अन्नपूर्णा देवी को फिर भी इनकी शक्ति का पता था कि कितना खाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बार एक झटके में सागर को पी लिया था। तो ऐसा भोजन करने वाला आदमी आएगा तो थोड़ा सा सोच के बनाना पड़ेगा ना आपको। तो उनको एंड में बिठाया था, मतलब समझो जिलेबी लेके आए तो एक जिलेबी देंगे, एक जिलेबी देंगे, सबको एक देंगे, और एंड में जो है वो ऐसे करेंगे सब उसके प्लेट में, और वो खाली पर्वत पर्वत ही खाएगा, चावल का पर्वत, सब्जी का पर्वत, जिलेबी का पर्वत, इसका पर्वत, उसका पर्वत, पकौड़े का पर्वत, ऐसे ही खाएगा वो। इसलिए उसको लास्ट में रखा था, पंगत में बांट के हो गया तो एंड में सारा उसको दे देगा, और भगवान भी जाके उसके नेक्स्ट बैठ गए, सेकेंड लास्ट। पार्वती देवी चिंतित थी बहुत कि भगवान अगस्त्य मुनि आए हैं, पता नहीं मेरी पंगत का अपमान होगा, पंगत समाप्त हो जाएगी तो कितना मुझे संकोच होगा कि पार्वती के भोजन में समाप्ति हो गई और हमको मिला नहीं पेट भर के। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं उसके नेक्स्ट बैठा हूँ, मैं संभाल लूँगा इसको। तो इस सब लोगों का समाप्त होने को आया था, उनकी शुरुआत ही हो रही थी अगस्त्य मुनि की। तो भगवान ने क्या किया, देखो पंगत में नियम होता है, आपको पता होगा शायद, इसमें पंगत बैठे है ना तो जब तक सीनियर मोस्ट व्यक्ति उठता नहीं ना तभी आपका फिनिश हो गया, तभी आप उठ नहीं सकते। अगर आप उठे तो बुजुर्ग लोग अपमान मानते हैं और खाना छोड़ के चले जाते हैं कि आपके घर में कोई संस्कार नहीं है। तो पंगत में कोई भी जब तक सीनियर मोस्ट आदमी शुरू नहीं करेगा तो कोई शुरू नहीं करेगा, और जब तक वो नहीं कहेगा जय जय श्री राधे समाप्त हो गया तब तक कोई उठेगा नहीं, ऐसे बैठेगा समाप्त करके। लेकिन कृष्ण भगवान तो कृष्ण भगवान है, बीच में ही उठ गए, तभी इन्होंने शुरू भी जस्ट किया था। तो कहते हैं अरे अभी तो मैंने तो इंटरवल भी लिया नहीं है। इंटरवल में क्या करते हैं हम लोग, एक घूट पानी पीते थोड़ा सा सेटल करने के लिए ना, बहुत सारा खाना है तो फिर वो बीच में पानी पीते रहते ताकि वो जगह बने ना थोड़ी अच्छी। तो कहते हैं मेरा इंटरवल भी अभी तक आया नहीं है और आप उठ गए। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आपको मैं जल पिलाने की व्यवस्था करता हूँ, आप चिंता मत करना। तो जब गोवर्धन को उठाया तो वर्षा हो रही थी ना, जब टिल्ट किया तो क्या हो गया, पानी आया ना उधर से, तो उधर अगस्त्य मुनि खड़े थे, वो पानी पिया उन्होंने। तो एक कारण था इनको पानी पिलाने का, एक कारण था सभी ग्वाल बालों को लगता था कि हम उठा रहे हैं, उनको सत्य बताने का कि आप नहीं उठा रहे हो, मैं ही उठा रहा हूँ। इस प्रकार से गोवर्धन के अंदर बहुत लीलाएँ हुई, अनंत लीलाएँ हुई, क्योंकि उनको एक ही ऐसा मौका था कि सब लोग साथ में थे। नहीं तो क्या होता है, रात में किसके साथ, गोपियों के साथ, तो ग्वाल बाल कोई नहीं है, दिन में गाय और ग्वाल बाल के साथ, उधर गोपी नहीं है, घर पे गए तो माता पिता, लेकिन ग्वाल बाल के साथ में रोड पे माता पिता नहीं है। तो अलग अलग ग्रुप कृष्ण के साथ अलग अलग टाइम पे हुआ करता था, ये सारे ग्रुप्स एक साथ में कभी होते नहीं थे। गोवर्धन लीला एक ही ऐसी लीला है जिसमें सारे प्रकार के भक्त जो है, तो बॉयफ्रेंड्स है, गर्लफ्रेंड्स है, माता पिता है, गाय है, मोर है, बंदर है, कोयल है, सब प्रकार के पक्षी प्राणी सब उसके अंडर थे, और सबने एक साथ में रहने का आनंद लिया, सात दिन सात रात। और भगवान का अस्तित्व, उनका प्रेजेंस इतना पावरफुल था कि किसी को नींद नहीं आई, किसी को बोर नहीं हुआ, किसी को भूख नहीं लगी, उसके परे जा चुके थे वो। भगवान का गिरिराज को, गोवर्धन पर्वत को उठाया हुआ जो दर्शन था वो इतना दिव्य था कि कोई कुछ चीज़ को याद नहीं कर पाए। हमको भी अगर शरीर के विकारों से और वेगों से अगर मुक्त होना है तो भगवान का चिंतन करना पड़ेगा। भगवान के ध्यान में जब मग्न होते हैं तभी जाकर भूख प्यास सब मिट जाती है, फिर किसी चीज़ का वेग हमको कष्ट देता नहीं है। ऐसे सात दिन और सात रात भगवान ने सब लोगों को आनंद दिया। और जब वर्षा रुकी तो अभी समझो आप वर्षा के कारण इस घर में समझो अटके हो, घूमने आए थे इनके मिलने के लिए और भयंकर वर्षा हो गई, तो माता जी क्या बोलेगी, रुको अभी आप रुकने तो वर्षा, फिर लंच टाइम आएगा, अभी लंच भी खा लो, अभी तो वर्षा हो रही है, फिर थोड़ा रुको, थोड़ा आराम कर लो, फिर भी वर्षा हो रही है, फिर आप बोलेंगे डिनर भी खा लो अभी क्या करेंगे, फिर भी वर्षा रुक नहीं रही है, तो बोलेंगे आप रात को रुक जाओ कल सवेरे जाओ। तो आपका सबसे पहला एम क्या होगा कि कब वर्षा रुकते, कब मैं जाऊँ यहाँ से, क्योंकि आपको पता है इनको संकोच हो रहा है, इनको कष्ट हो रहा है, आप इनको कष्ट दे रहे हैं, मिलने के दो मिनट के लिए आई थी, अभी 15 घंटा हो गए तो भी वर्षा नहीं रुकती है। तो आपका फर्स्ट एम क्या रहेगा कि जैसे रुके ना मैं जाऊंगी, माता जी को कष्ट नहीं दूंगी। और तो आपको क्या लगता है, सात दिन वर्षा हो रही तो लोग क्या सोचते होंगे कि कब रुकेगी और कब हम घर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब वर्षा एक्चुअल रुकी तो सबने मन में प्रश्न पूछा क्यों रुकी, जो चल रहा था वो इतना अच्छा चल रहा था, ना खाना पीना रहना ना सोना, कुछ बंधन नहीं, कुछ विकार नहीं, कोई कष्ट नहीं, अरे आनंद ही आनंद है, कृष्ण का सानिध्य है, दर्शन है, लीला चल रही है, सब लोग बोल रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं प्रेम का, वो हंस रहे हैं, मुरली बजा रहे हैं, राधा रानी बैठी हुई है, वो उनको देख रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं, सब उनको देख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में, सारे प्रॉब्लम फिनिश हो गए। तो बाहर निकलने के बदले में उन्होंने सोचा बारिश क्यों रुकी और क्यों जाना पड़ रहा है बाहर हमको, भी इतनी सुंदर लीला समाप्त क्यों हो रही है। ये भगवान की लीला का वैशिष्ट है, उनकी लीला को देखकर ना कभी कोई बोर नहीं होता है। अभी ये कथा मैं कई बार कई जगह अनेक प्रकार से कह चुका हूँ, ना मुझे कहने में कभी बोर हो गया है, ना सुनने वालों को सुन के बोर हो गया है। यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जो पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन भगवान की लीला में एक विशेषता है कि आप जब भी सुनेंगे तो आपको बार बार सुनने का मूड होगा। अभी राम ने रावण को मारा, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, हजारों बार सुना होगा, टीवी पे देखा होगा, डिस्कस किया होगा, विजयादशमी को बात करते हैं, लेकिन राम ने रावण को मारा इसकी कथा आप जितनी बार देखोगे, जितनी बार सुनोगे, आपको लगता है कि पूरा वापस सुनते रहो, क्योंकि वो कथा भगवान के विषय में है, फिल्म स्टार के विषय में नहीं है। कितनी भी रोचक कहानी होगी उसके लव अफेयर की, एक बार सुन के दूसरी बार पढ़ने को बोर हो जाएगा। कितना भी फेमस गाना होगा फिल्म का, एक गणपति में बजेगा दिन रात, अगले गणपति में बोले चेंज करो अभी ये नहीं चाहिए, अरे वो हिट गाना था, उसको तो कितने हिट्स मिले थे, नया गाना चाहिए। दुनिया की हर चीज़ बोरिंग होती है कुछ समय के बाद, कुछ समय आनंद देती है, बाद में चेंज करने का। अभी देखो पैंट नहीं लेके आएंगे ना तो बोलेंगे अरे तो धूल तो नहीं है किधर, बाद 10 बार झटकेंगे और बैठेंगे, 6 महीने के बाद वही पैंट लेके किधर भी बैठेंगे आप, देखेंगे नहीं किधर बैठे हैं, क्योंकि हर चीज़ का आनंद कुछ समय के लिए है और समाप्त होने वाला है। भगवान की लीलाओं का आनंद कभी समाप्त नहीं होता है। वही लीला 50 बार लगातार सुनो, एक के बाद वही कथा सुनो रिपीट, आपको बोर नहीं होगा, क्योंकि उसके नायक जो है, जो उसको हीरो है, वो कृष्ण है, वो राम है, वो नरसिंह है, वो वामन देव है। कितनी बार भी कितनी बार कहानी सुनोगे कभी आपको उसका संकोच नहीं होगा, बोर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए जीवन के कष्टों को अगर मिटाना है तो हमें भगवान की कहानी सुननी चाहिए। नरसिंह भगवान आए, क्या किया, प्रभु राम आए, उन्होंने क्या किया, वामन देव आए, उन्होंने क्या किया, कुछ लीलाएँ छोटे समय की है, प्रभु राम की लाखों सालों की लीलाएँ, कृष्ण की कुछ सैकड़ों 125 साल की लीलाएँ, अनंत लीलाएँ भगवान ने की है। इसका कारण क्या है, हम सबको कुछ चर्चा करने के लिए, कुछ सुनने के लिए विषय मिले, इसलिए भगवान विविधतापूर्ण लीला करते हैं। कभी आके किसी का पेड़ फाड़ते हैं, कभी किसी को बाणों से सर उड़ा देते हैं, कभी खंभा तोड़ के आते हैं, हाँ कभी 3 पग भूमि धारण करके पूरा स्वर्ग लोक को नाप लेते हैं वामन देव के रूप में, कभी मत्स्य के रूप में, कभी करा वरा के रूप में, संभवामी युगे युगे इतने अवतार लेते हैं ताकि हम लोगों को चर्चा करने के लिए कोई विषय मिले, नहीं तो क्यों लीला करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ बात, क्योंकि डॉक्टर हूँ ना मैं, किसी को अगर मारना है तो हम क्या सोचते हैं, अगर हार्ट के अंदर के मेन आर्टरी अगर काट दी जाए तो बाहर कहीं ब्लीडिंग दिखेगा ही नहीं, अंदर ही आदमी ख़त्म हो जाएगा। तो भगवान तो सूक्ष्म रूप धारण करके भी किसी के अंदर प्रवेश कर सकते हैं और अपने चक्र से अंदर की धमनी काट सकते हैं ना, कितना बड़ा खंभे से आना गर्जना करके, फिर उसको दोपहर 12 बजे को आए थे खंभे से बाहर और शाम तक युद्ध करते रहना, फिर योग्य समय आने के बाद दहलीज पे अपने गोद में, हवा में नहीं, पानी में नहीं, शस्त्र से नहीं, अस्त्र से नहीं, दिन में नहीं, रात में नहीं, ये सारा ब्रह्मा जी का नियम पालन करके फिर उसको गोद में रखना, 2 हाथ से पकड़ना, 2 हाथ से फाड़ना, 2 हाथ से आंते निकाल के माला पहनना और बाकी गर्जना करते रहना, इतना सारा लीला क्यों किया, सीधा अंदर जाके चक्र से अंदर का वेसल क्यों नहीं काटा। अरे अगर वेसल काटते तो आपको चर्चा करने के लिए क्या मिलता, व्हाट वी विल डिस्कस, इसलिए वो लीला करते हैं। लीला का प्रयोजन केवल एक ही है, हमको विषय मिले, क्योंकि हमको कोई हीरो चाहिए और हीरो की सब कथा सुनने को अच्छा लगता है, तो भगवान सबसे बड़े हीरो हैं, उनकी कथा सुनेंगे तो संस्कार भी अच्छे होते हैं, बुरे विचार भी नहीं आते बच्चों के मन में, और बच्चों को संस्कार मिलते हैं, रिझते हैं बच्चे और सो भी अच्छी तरह जाते हैं। इसलिए हमारे सभी घरों में ये संस्कार है, रोज रात को बच्चों को कहानी सुनाना और सुनते सुनते बच्चे सो जाते हैं, उनको सपने में भी भगवान ही आते हैं, फिर सुबह उठ के बोलते हैं भैया आपने कथा सुनी है ना कल राम की, वो कल रात को राम सपने में आए थे। और रात को अगर कोई पिक्चर देख के सोएंगे तो रात को डर के उठेगा, मैया क्या हो गया भाई, कोई मारने को आ रहा है, गोली मार रहा है। रात को गोली मार कर सोते हुए देख के सोया था ना वो, तो वही याद आएगी उसको। यही संस्कार है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उम्मीद है कि मैंने ज़्यादा लंबा नहीं खींचा होगा, मेरी बड़ी बुरी आदत है लंबा लंबा बोलने की, कि आशा है आपको अच्छा लगा होगा। जय जय श्री राधे श्याम। कोई प्रश्न है किसी का, एनी क्वेश्चन?